أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد وعلى محمد گناہوں کو ترک کرنے کے سلسلے میں ہماری حکمت عملی کیا ہو، اس متعلق ہماری گفتگو جاری تھی اور آج یقیناً انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی اس موضوع پر. موضوع تھا ہی اتنا اہم کہ اس کو بیچ میں اس انداز سے چھوڑ دینا مناسب نہیں لگا، کیونکہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو آپ ایک ایسی عمارت کھڑی کریں گے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی، جو ہوا کے ایک جھونکے سے گر جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور آج جو نیا نقطہ آج ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہے مستحبات کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا. اس کا راز اور فلسفہ یہی ہے کہ انسان جتنا زیادہ نیکیاں کرنے کی فکر میں رہے گا، آپ چاہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ مستحبات انجام دوں، ہر کام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کماؤں، تو پھر آپ کا دماغ خود بخود نیکیوں ہی کی طرف راغب ہوگا، پھر یہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا. یہ اس کا راز ہے. یعنی اگر آپ زیادہ تر اس بات کی فکر میں رہیں گے، مثلا آپ حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ اگر بیت الخلاء بھی جانا چاہیں ٹوائلٹ، تو آپ اگر اس میں بھی نیکیوں کی تلاش میں رہیں، ذرا سا توصیل مسائل نکال کر اگر آپ پڑھ لیں کہ کتنے مستحبات ہیں کیا مکروہات ہیں، کھانا کھانے آپ بیٹھ رہی ہیں کیا مستحبات ہیں کیا مکروہات ہیں، کون سا نیک کام کروں میں تو ثواب زیادہ لے لوں، صدقہ آپ دینا چاہ رہی ہیں تو کون سا ایسی چیزیں میں نیتیں کر لوں کہ جس سے صدقے کا ثواب ملٹی پلائی ہو جائے. بعض اوقات ہزار گنا، ایک ایک لاکھ گنا صدقے کے ثواب کو آپ بڑھا سکتی ہیں، جس کی تفصیل کبھی اور آئے گی. تو مستحبات کی انجام دہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس فکر میں لگ گئیں، کتنے ہی مومنین ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو باقاعدہ علماء سے آ کر پوچھتے ہیں کہ زیادہ ثواب بتائی کہ کس عمل کے اندر ہم یہ عمل انجام دینے تو جا رہے ہیں، اس میں اور زیادہ ہم ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جتنا آپ زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر میں رہیں گی، اتنا ہی زیادہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی. اور ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ جتنے بھی مستحبات نیکیاں، ان سب کا آپ کی روحانیت میں ایک اثر ہے. مثال دے دیتا ہوں، جیسے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی فرماتے تھے کہ ہر نیکی کا آپ کی روح میں ایک حصہ ہے، ہر مستحب کام کا. اور جتنے بھی آپ مستحب کام انجام دیتی جائیں گی، مثلا مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ مستحبات ہیں شریعت اسلام میں اور آپ نے 99,999 مستحبات انجام دے دیے اور ایک مستحب کام پھر بھی رہ گیا، ایک مستحب کام اگر پھر بھی رہ گیا تو آپ کی روحانیت کا اتنا حصہ نامکمل رہ جائے گا. یعنی ہر مستحب کام کا آپ کی روح میں ایک حصہ ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک ایک دفعہ کم سے کم ہر مستحب کے اوپر عمل کر لیں، تاکہ آپ کی روحانیت کا وہ حصہ مکمل ہو جائے اور جب عالم آخرت میں ہمیں اٹھایا جائے تو ہم ایک مکمل انسان کے طور پر مکمل روحانیت کے ساتھ وہاں پر اٹھائے جائیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے، کم سے کم خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صحیح. یہی اسی بات کے پیش نظر خود مدرسہ ایک کتاب کمپائل کر رہا ہے جس کا نام ہی ہے 1,000 نیک اعمال کی فہرست، 1,000 نیک اعمال کی فہرست. تو اس کے اندر کم سے کم آپ اس کے سامنے وہ سارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے اور ان کے سامنے ان کی تعداد لکھی ہوئی ہوگی، تو خواہ ایک نہ ایک عمل کے اوپر آپ ٹک کرتی جائیے اپنی پوری زندگی میں، ایک ایک دفعہ کم سے کم. ویسے تو جتنا بھی زیادہ عمل انجام دے سکیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ نیکی انجام دینا چاہتی ہیں نا، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 کے بعد آپ کا دماغ جواب دے جاتا ہے کہ اور کون سی نیکی ایسی رہ گئی جو میں انجام دوں. تو اس میں 1,000 کم سے کم نیک اعمال کی فہرست ہوگی، کم سے کم ایک ایک دفعہ اس کو انجام دے لیں تاکہ آپ کی روحانیت مکمل ہو جائے اور میدان قیامت میں ایک مکمل انسان کے طور پر اٹھائے جائیں. اچھا، ایک تو چیز یہ، اور یہی وجہ ہے کہ مرحوم امام خمینی اپنی عام زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. کبھی کبھار جیسے ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا, تو آپ نے دیکھا کہ جس وقت ٹیشو پیپر نکالتے ہیں تو دو پیپر ایک ساتھ نکلتے ہیں, وہ اس کو دو کو الگ کرتے تھے, ایک نکالتے تھے اور ایک اسی میں رکھ دیتے تھے. اس ایک پورے ٹیشو پیپر کو بھی کبھی کبھی استعمال نہیں کرتے تھے, اگر تھوڑی ضرورت ہے تو اس میں سے آدھا حصہ پھاڑا آدھا دوبارہ رکھ دیا. کیوں اپنے آپ کو ایک اسراف اور فضول چیز کے اندر ہم جو ہے لے کر جائیں. پانی بالکل نہیں بہاتے تھے وضو کے دوران, اور جتنی بھی اور اس طرح کی چیزیں ہیں, حتیٰ کہ کمرے میں جب کبھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور کہیں کوئی تصویر رکھی نظر آتی تھی, یا تو تصویر کو نیچے کر دیتے تھے, کیونکہ تصویر اگر کمرے میں کسی جگہ پر ہو تو مکروہ ہے, چاہے کمرے میں پیچھے کی طرف کیوں نہ لگی ہوئی, تو اس وجہ سے یا تو اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالتے تھے تاکہ کیوں میں اپنی نماز کے ثواب کو کم کروں. آپ بھی دیکھیں کمرے میں کوئی ایسی تصویر تو نہیں لگی ہوئی, ہو سکتا ہے کہ نماز کا ثواب آپ کو 1000 ملنا ہو اور اس تصویر کو لگنے کی وجہ سے آپ کا ثواب جو ہے وہ مثلا 500 رہ جائے یا 200 رہ جائے, تو اپنے 500 یا 800 جو ہے ثواب کو نمبرز کو ہم کیوں کم کریں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دیں. ایک تو طریقہ کار یہ, جب آپ نیکیاں کرنے کی فکر میں رہیں گی نا, تو آپ کا خود بخود دماغ گناہوں سے ہٹ جائے گا اور فکر گناہ دماغ میں آئے گی نہیں, بلکہ فکر نیکی آپ کے دماغ میں پرورش پانے لگے گی. اس کے بعد اگلا نقطہ جو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کروائیں کہ سیدھے طریقے سے یہ باز آنے والا نہیں ہے, گناہوں کو نہیں چھوڑے گا, نیکیوں کی طرف اس کو اس طرح سے لانا پڑے گا. مثلا مرد حضرات ہیں, جیسے اگر وہ کتنا زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے, وہ کہیں کہ ٹھیک ہے عام طور پر مساجد کے اندر بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے, اعلانات ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کتنی دیر, گھنٹہ بھر ایک نماز کے اندر لگ جاتا ہے, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے, اپنے دل میں سوچے, اپنے نفس کو بہلائے کہ میں جاؤں گا مسجد میں اور مسجد میں بس واجب نماز پڑھ کے آ جاؤں گا, اعلانات اور تعقیبات کے اندر میں اس کو انجام نہیں دوں گا, میں گھر آ کے یا رستے میں تعقیبات پڑھتا رہوں گا, یا مثلا میں ایک نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا, وہاں دو نمازیں ہوتی ہیں مثلا ظہر عصر, میں ظہر کی جماعت سے پڑھوں گا, عصر کی فرادہ پڑھ کے گھر واپس آ جاؤں گا, تو 10-15 منٹ لگیں گے. بعض اوقات نفس کو بہلانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہرحال گھر سے پڑھنے سے زیادہ ہے, گھر میں نماز پڑھنے سے میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا لیکن مسجد میں جا کر پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے, اور پھر وہاں سے پڑھ کر آ جاؤں گا کیونکہ وہاں پہ بہت دیر لگتی ہے. جب یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لے جائے گا مسجد کی طرف, تو خود بخود اس کا دل چاہنے لگے گا کہ اب میں جب آ ہی گیا ہوں تو کیوں نہ جماعت پڑھ کے جاؤں, جب ایک نماز پڑھ لی ہے تو کیوں نہ اب دوسری جماعت سے بھی کیوں نہ پڑھ لوں, جب دوسری جماعت بھی ہو گئی تو تھوڑی سی تعقیبات بھی کیوں نہ پڑھ لوں. اس طرح سے اپنے نفس کو یہ بہلائے بہلائے اور اپنے آپ کو اس انداز سے لے کر چلے کہ یہ تمام نیکیاں وہ کر سکے. اس کو ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, دیکھیے آپ, میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایکسرسائز کرنا چاہے تو جناب اگر پہلے دن وہ 1 گھنٹے کی واک کرے گا تو اگلے دن ٹانگوں میں اتنا شدید درد ہوگا کہ وہ واک کر ہی نہیں سکے گا, تو کیوں نہ وہ اسٹریچنگ اس سلسلے میں کرے, 15-20 منٹ کی واک کرے اور آہستہ آہستہ اپنے ٹائم کو بڑھائے. یعنی ایک لحاظ سے ہی اپنے جسم کو عادی بنانا ہے یا بہلا بہلا کر اسے ایکسرسائز کی طرف مائل کرنا. اسی طریقے سے ہمیں بھی, جب یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے, مولا فرماتے تھے کہ اپنے نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی کو اختیار کر لے. مثلا ایک بزرگ خود فرماتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھنے کا عادی نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے نفس کو بہلایا کہ ٹھیک ہے نماز شب مجھ سے اٹھ کر نہیں پڑھی جاتی لیکن میں الارم ضرور لگاؤں گا نماز شب کے وقت, ٹھیک ہے چاہے میں الارم بند کر کے سو جاؤں لیکن میں اٹھوں گا ضرور, انہوں نے وہ کرنا شروع کیا. انہوں نے یہ کرنا شروع کیا, کیا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی نفس کو بہلا بہلا کر نیکیاں کرواؤ تاکہ یہ مکمل اطاعت الہی اختیار کر لے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شب کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہے لیکن میں الارم تو لگا سکتا ہوں, نماز شب نہیں پڑھوں گا لیکن اٹھوں گا ضرور. اچھا جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو میں تھوڑی دیر کے لیے پاؤں لٹکا کے بستر سے نیچے ضرور بیٹھوں گا, 2 मिनट और बैठ के एक तस्बीह पढ़ लूंगा फिर चाहे सो जाऊं। फिर तुमने ये स्ट्रेचिंग हो रही है, नफ्स को बहलाया जा रहा है, आगे की तरफ लाया जा रहा है, इसे राम किया जा रहा है। जब उठ के बैठ ही गए तो कहा कि चलो वजू करके आ जाता हूं। जब वजू करके आ ही गए तो कुसल मंदी वैसे ही सुस्ती वगैरह दूर हो जाती है वजू करने से। जब उठ ही गया हूं तो चलो नमाज शब भी पढ़ लेता हूं। ये बहुत ही नहुसत वाला हमारा नफ्स है, ये इतने आराम से काबू में नहीं आएगा। इसके लिए इस तरह की चक्करबाजियां करनी पड़ेंगी, यानी ये मैं जरा वैसी जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ बाजारी टाइप की, लेकिन क्या करें कि इसका आदी हो गया है। तो ये बहुत ऐसी चीजें कि जिसमें जिसका खसूसियत के साथ ख्याल रखना, नफ्स को बहला बहला कर नेकियां करवाइए, एकदम से बहुत सारे काम ना करवाइए वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये एकदम से इनकार कर देगा उस काम को करने में। फिर उसके बाद अगला तरीका है, जहां तक भी मुमकिन हो सके जो मुख्तलिफ इलाकों में जो दुरूस हो रहे हैं, दरस व तदरीस हो रही है, उसमें या तो शरीक हो या आप खुद उसका इनेकाद करवाइए। दरूस अखलाक और दरूस फिक्र में शिरकत। दरस अखलाक से इंसान मायल होता है कि वो इतात परवरदिगार अंजाम दे, और इतात परवरदिगार कैसे अंजाम दे उसके लिए दरस फिका होता है कि अमल को ताकि ठीक तरीके से अंजाम दे सके। खाली अखलाकियात से भी काम नहीं चलता अगर अमल गलत हो रहा हो, और अखलाकियात रागिब करती है इंसान को अमल की तरफ लाने के लिए। तो ऐसे दरसों या तो ऑलरेडी दर्स हो रहे हैं, आप पता चलाएं कि ऐसे दर्स कहाँ हो रहे हैं, नहीं अगर हो रहे किसी जगह तो आप उनके कैसेट्स लेकर सुने। रोजाना की बुनियाद पर आप लोगों का मामूल होना चाहिए। यहां पर एक दिन की जो क्लास है हरगिज भी काफी नहीं, यकीन कीजिए कि बिल्कुल भी काफी नहीं है। आपको अलग से बाकायदा पूरी लाइब्रेरी आपके पास है रोजाना की बुनियाद पर, एक एक कैसेट तो कम से कम जरूर आप ले जाकर घर पे सुने ताकि जरा तेज रफ्तारी से काम मुकम्मल हो सके। ये तो हालात खराब हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, इतनी कम क्लासेस बाज़ोकात हो पाती हैं कि आपके लिए बहुत ही कम और नामुनासिब है इतना। वो नीचे जाके पूरी लाइब्रेरी है उस काम के लिए, वहाँ सब लिस्टें भी मौजूद हैं हर जगह, आप जाकर देखें और जो भी आपको मुनासिब लगे वो जाकर ले सकती हैं। अच्छा, अब या तो इस तरह पे अमल करें, या फिर एक और चीज़ अगर हो सके तो अपने घरों में क्यों नहीं मुनाकिद करती हैं आप कोई ऐसा, यहाँ पे मदरसे की सीनियर तालिबात भी हैं बहुत अच्छे दर्स देती हैं, आप उनको लेकर आएँ। बहुत से कौम से फारिग तहसील तालिबात यहाँ पर आई हैं, उनसे आप फैज़याब हों। बहुत से उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घरों में इनेकाद करवाएं। जब नया इनकलाब इस्लामी ईरान आया था तो आपने देखा था कि इसके समरात कितने ज़्यादा फैले थे, क्योंकि हर घर में तकरीबन दर्स होने लगे थे, तकरीबन हर घर में दुआ कुमैल होती थी, हर घर में हदीस किस्सा होने लगी थी, हर घर में मसलन दुआ नुदबा होने लगी थी, इस तरह की महफिलें मुनक़द होने लगी थी। तो घरों में करने का एक फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे घर के आपके ऐसे अफराद जो कि आम तौर पर ना कभी मस्जिद आते हैं ना कभी मदरसे आते हैं, इनको दीन कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचेगा, आपकी वो बात सुनेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो आप कम से कम अगर जब घर में इस चीज़ का इनेकाद होता है तो ऐसे अफराद भी उस घर में शरीक हो जाते हैं कि जो आम हालात में कहीं इल्म हासिल करने नहीं जा सकते। तो आपको खुद ही कुछ ऐसे क्योंकि अकेला आदमी, ये बात याद रख लीजिए कि खुद तो आप मैराथन में अव्वल आ रही हैं और घर वाले सारे जो है मसलन स्लोसर साइकिलिंग के मुकाबले के अंदर अव्वल आ रहे हैं, सब इतने ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप कभी भी आपको खुद थोड़ा सा उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। तो ऐसे दुरूस जो है वो मुनक़द करवाने, और ख़ुद हम देखते हैं कि ईरान में हत्ता के उलमा तक, उलमा बड़े सीनियर उलमा, वो तक दरस अखलाक और दरस दुरूस जो होते हैं उसमें जाकर अटेंड करते हैं। इमाम खुमैनी जिस वक्त दरस दिया करते थे तो आप देख रहे हैं कि सारे अमामे ही अमामे आपको जो है सामने नज़र आ रहे हैं। तो उलमा खुद भी इससे मुस्तस्ना नहीं समझते अपने आप को, यानी वो दरूस के अंदर शरीक होते हैं, और क्योंकि किसी भी जगह जाकर दर्स में शरीक होना खुद उस महफिल का एक अपनी एक चाशनी। मसलन यही चीज़ अगर आप सिर्फ टीवी के ऊपर देख लें, इसका सिर्फ कैसेट सुन लें, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो उस महफिल के अंदर बैठने का एक मज़ा होता है, जो लुत्फ होता है और जो एक रूहानी बालिदगी और एक नमो आपको हासिल होता है आपकी रूह को, वो आमतौर पर कैसेटों वगैरह के जरिए सुनने में नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात नहीं, अगर कोई शख्स आ सकता तो कम से कम ये चीज़ें तो वो इस तरह से अंजाम दे सकता है ना। आपने देखा कि मसलन अभी कुछ ही अरसे पहले आका अली पनाह इश्तिहार दी कुम में सबसे बड़ा दरस अखलाक इनका हुआ करता था, कुछ ही अरसे पहले इनका इंतकाल भी हुआ है, और जिस वक्त ये कभी आते थे कुम में رہتے تھے اور وہیں پر درس اخلاق ہوتا تھا، جب درس کے لیے آتے تھے تو اکثر ممبر پر بیٹھ کر، ابھی درس شروع بھی نہیں ہوا کہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے تھے، اور یہاں تک کہ ابھی کچھ بیان بھی نہیں ہوا مجمع بھی بیٹھ کے رونے لگتا تھا خوف خدا سے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات معمولی سا بیان کرنے کے بعد ہی وہ مجلس برخواست ہو جاتی تھی اور لوگ آنسو پوچھتے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ تو خود ان کا درس اخلاق، آغا علی پناہ اشتہاردی ان کا نام ہے، علی پناہ اشتہاردی ان کا ایک درس ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید دست غیب شیرازی، ان کی کتنی کتابیں بھی ہیں اخلاقیات کی، وہ آپ لے کر پڑھ سکتی ہیں، اور ان کا درس اخلاق بڑا مشہور تھا آغا علی پناہ اشتہاردی کا۔ اسی طریقے سے امام خمینی حتیٰ کہ جب فرانس میں جلا وطن تھے تو وہاں پر بھی ان کا درس مستقل چلتا تھا، اور اس میں خواتین بھی شریک ہوا کرتی، یعنی کہیں پر بھی انسان اپنا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مستثنا ہو جائے کہ اب تو میں علم میں کافی آ گیا ہوں، مجھے اس کسی درس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ آقا علی آقا قاضی، یہ خود مرحوم آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، آیت اللہ خوئی کے استاد تھے، خود آیت اللہ بہجت علی آقا قاضی کے درس میں جایا کرتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ خوئی جا کر اپنا دستور العمل آیت اللہ علی آقا قاضی سے لیا کرتے تھے کہ میں کیا کروں، میں کس طرح سے اپنی زندگی گزاروں، اور باقاعدہ کچھ عملیات آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے لیے دستور العمل کے طور پر معین فرماتے تھے، اور اس کے اوپر پھر وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح کے درس جب تک آپ بار بار نہیں سنیں گی، ہفتے میں ایک دفعہ صرف آ جانا، یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہوگا۔ امام خمینی خود آقا جواد ملکی تبریزی کے درس اخلاق میں جایا کرتے تھے، یہ امام خمینی کے اساتذہ میں سے ہیں، آیت اللہ علی آقا قاضی، آیت اللہ بہجت وغیرہ کے جیسے کہ اساتذہ میں سے تھے، اور جواد ملکی تبریزی اور آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے عرفانیت کے استادوں میں سے تھے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں، ویسے تو اور علماء بھی ماشاءاللہ کافی کام کیے، لیکن سب سے زیادہ کام جو ہم کو نظر آیا ہے درس فقہ اور درس اخلاق کے حوالے سے، وہ ہمارے استاد محترم مولانا مرزا محمد صادق حسن صاحب قبلہ، ان کا کام۔ اور پوری دنیا میں کس طریقے سے ایک ایک جگہ کے اوپر جاتے ہیں مولانا، یعنی واقعی ان کا اخلاص، اور دیکھیے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ وہ کوئی شخص خود تو اپنی تعریف نہیں کرے گا، دوسروں کو چاہیے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں دوسروں کو بتائیں، تاکہ لوگوں کو، ابھی تک پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں، اصل میں ہم لوگ ہیں مردہ پرست قوم۔ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے نا، پھر کہتے ہیں ارے بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی، اور جب تک وہ موجود ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے مثلاً ڈنڈا لے کے لگے رہتے ہیں، اور مستقل اس کو پریشان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ خود مولانا محترم فرماتے ہیں کہ درس اخلاق اور درس فقہ کے لیے مختلف علاقوں کے اندر یہ جاتے تھے، تو بعض بہت ساری جگہوں کے اوپر تو باقاعدہ گدا گاڑی تک کے اوپر بیٹھ کر گئے، یہاں تو بہت سارے افراد اس طرح کے کہ مرسیڈیز کار سے کم پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے، مولانا سائیکل پر بیٹھ کے گئے ہیں، رکشہ میں تو ہم خود ہی کتنی دفعہ مولانا کو لائے گئے ہیں، ساری زندگی ایک لحاظ سے کراچی میں تو رکشوں میں مولانا نے گزاری۔ تو بہرحال، تو اگر اس طرح کی چیزوں کا اگر آپ خیال کریں، یہاں پر سی ڈیز بھی اویلیبل ہیں، چاہیں تو مدرسے سے اب بھی آپ لے سکتی ہیں یہ تمام سی ڈیز وغیرہ، اور ورنہ آپ خود ایسے دروس کا انعقاد کروائیں اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، تو بہت اچھا ہے۔ اور دیکھیے ایک آدمی کبھی یہ کام نہیں کر سکتا، آپ اپنی ہم خیال خواتین کا ایک گروپ بنا سکتی ہیں، مثلا کوئی کہے کہ میرے پاس گاڑی ہے یا اس کا انتظام ہے میرے پاس، میں مثلا ذاکرہ کو یا عالمہ کو لاؤں، لانے لے جانے کا کام کر لوں گی، کسی کا گھر نسبتاً بڑا ہے اور وہاں پہ سہولت ہے، کہیں گے کہ انعقاد میرے گھر میں کر لیں، کوئی خواتین، کچھ خاتون پیسوں کے لحاظ سے ذرا مضبوط ہو، کہیں تبرک کا انتظام میری طرف سے، کوئی جو ہے کچھ کر لے، کوئی کچھ کر لے، کسی کو چائے بہت اچھی بنانی آتی، کم سے کم میں اس محفل کے لیے چائے میں بنا دیا کروں گی، یا میں اس کا انتظام کر دوں گی۔ تو اس طرح سے کام جب ڈیوائڈ ہو جائیں گے تو ایک آدمی کے اوپر ہی بوجھ نہیں ڈل جائے گا، کہ وہی آدمی عالم کا بھی انتظام کرے، وہی جو ہے کھانے کا بھی انتظام کرے، وہی تمام چیزوں کا انتظام کرے، وہی اطلاع دینے کا بھی انتظام کرے۔ بہت سی خواتین ہیں کہیں گے میرے پاس ایسے پیکیجز ہیں، میں فون کے ذریعے ہر ایک کو انفارم کروں گی، یہ والی ذمہ داری میری ہے۔ صرف چار پانچ خواتین مل کر بھی ایک علاقے کے اندر بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، بہت زیادہ، بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے، کیا 1500 کی تعداد چاہیے کسی علاقے میں درس کروانے کے لیے، صرف دو تین خواتین مل کر بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہیں۔ تو یہ اس کا خاص طور پر کسی اپنے مسجد میں کروا لیں، امام بارگاہ میں کروا لیں، کسی ایسے گھر میں کروا لیں جہاں پہ خواتین جمع ہو سکیں، اور اس میں یہ نہیں کہ بہت بڑی تعداد ہی چاہیے، 5-10 عورتیں بھی اگر کسی ایک درس میں بیٹھ رہی ہیں تو بس بہت کافی ہے۔ آپ گھر کے افراد بھی ہوں گے، کچھ باہر سے آ جائیں گی ریگولر، وہ ہو جائیں گی، اور آپ خود دیکھیں گے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی، ऐसी ऐसी बरकतें घर के अंदर आएंगी, आप देखेंगे कि परेशानियां घरों से गायब होने लगेंगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात आप बयान करवाएं तो। तो ये आप जरूर करके देखिए, मेरी बड़ी दरख्वास्त है आपसे कि इस बात की तरफ भी जाएं ताकि माशरे के अंदर कुछ काम होते हुए नजर आए। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ों से दूर हो गए, जैसे जैसे इनकलाब से हम शुरू शुरू में जब इनकलाब इस्लामी आया था तो उसके समरात और असरात जो है वो मुरतब हो रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात ऐसा लग रहा है जैसे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने सिलसिले में काम आगे नहीं किया। तो ये खसूसियत के साथ है। इसी तरीके से और सिर्फ यहाँ की बात ही नहीं, और जगहों पर भी, जैसे अफगानिस्तान जैसी जगह आयतुल्ला आसिफ मोहसिनी, या अफगानिस्तान के आयतुल्ला आसिफ मोहसिनी, और अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा एक रोल है वहाँ के दस्तूर को बनाने में। इनकी किताब भी है इस्लामी अखलाक का जदीद उसलूब, ये उर्दू में भी तर्जुमा हो चुकी है, ये भी आप लेकर ज़रूर पढ़ें, बेहतरीन किताब है। इस्लामी अखलाक का जदीद असलूब, इनकी किताब का नाम है आयतुल्ला आसिफ मोहसिन। अच्छा, आप लोगों को तो माशाल्लाह देखिए इन तमाम दरसो तदरीस में कितनी सहूलियात हासिल, अगर से लाइट वाइट की परेशानियां तो लगी रहेंगी, लेकिन पहले जमाने में देखें और किस तरीके से कोई अगर नहीं हो तो इतना आप पैनिक में ना चली जाया करें, बाद में किसी से ले लें, वरना फिर ये मुतासिर होती है गुफ्तगू। अच्छा, कितनी मुश्किलात होती थी, तस्वीर आपके सामने कि टूटी फूटी ज़मीन के ऊपर लोग बैठ के पढ़ते थे, ना दीवारें उसकी बनी हुई, इस तरह से पढ़ते थे, लेकिन अब सहूलियात ज़्यादा हो गई तो कोशिश करना चाहिए कि हमारे उस मेयार के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट आए, वरना मुश्किलात के अंदर खैर पढ़ने का इल्म दीन के हवाले से एक अलग ही एक लुत्फ और मज़ा है। अब ज़ाहिर है कि हर जगह पर सहूलियात हो गई हैं, कंफर्टेबल माहौल हो गया, और हमारे जिस्म भी उन सख्तियों के आदी नहीं रहे, तो परवरदिगार ने हमें सहूलतें भी दे दी हैं, तब उसका शुक्र यही है कि अच्छी तरह से उस इल्म को हासिल किया जाए। अच्छा, उसके बाद अगला तरीका है कि सबसे ज्यादा जो गुनाह होते हैं ये हमारी जुबान से होते हैं। अगर किसी भी एतबार से अपनी जुबान की हिफाजत कर ली जाए, कंट्रोल किया जाए इसको, अगरचे जुबान की आफात के ऊपर हमारे अलग से दर्स होंगे जिसमें उसके बाकायदा तरीके बताए जाएंगे कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, इसको फुतर बेमाहर की तरह से जिस तरह से हमने आज़ाद छोड़ा हुआ है, उसका लाजमी नतीजा होगा कि ये दो तोले की जुबान ये जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी। कहा जाता है ना जुबान के लिए कि ये कलीलुल हजम व कसीरुल जुर्म, इसका साइज तो बहुत छोटा है लेकिन इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील होती, और ये अकेले भी ये जुबान ये जहन्नुम में ले जाने के लिए बहुत काफी है। अगर देखा जाए तो 90-95% गुना फकत और फकत जुबान से होते और इसी के या इसके नतीजे में होते हैं जो ये बातें कही जाती हैं। तो ज्यादातर औकात में खामोश रहना या अपनी जुबान को कंट्रोल करके रहना, अच्छी बातों में जुबान को इस्तेमाल करें यकीनन, लेकिन यह खुद एक बहुत अहम तरीन चीज है कि इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तवील खामोशी शैतान को भगाने के हथियारों में से एक हथियार, तवील खामोशी, यानी ज्यादातर औकात में अपनी जबान को कंट्रोल करना, ये बहुत अहम है। या तो फिर उस तरीके से कंट्रोल होगा जो एक तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी, सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी मुंह पे। तो बहरहाल, तो इस पे हम तफसील से गुफ्तगू उस वक्त करेंगे जब हम जुबान की आफात के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, तो लिहाजा यहां तो हम तफसील में नहीं जाते, लेकिन ये आपके पास एक पॉइंट के तौर पर जरूर आ जाए कि इससे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गुनाह होते हैं, तो लिहाजा इसमें कोशिश करके अपने आप को बचाने के लिए तवील खामोशी की एक मश पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और तरीका है, घर में बाआवाज बुलंद अजान देना। शयातीन फरार इख्तियार करते हैं उस घर से। जी, औरतों के लिए भी मुस्ताहब है हर नमाज से पहले अजान और इकामत देना, तो आप घर में, अपने घर में बुलंद आवाज से अजान दें। जाहिर है कि नामहरम हो तो एक अलग मसला है कि अपने कमरे में भी इंसान जहां पे वहां पे भी उसी वक्त हमें अजान देनी जिस वक्त कोई नामहरम घर में मौजूद है, या उस वक्त जबकि कमरे में कोई और मौका सा तलाश कर लीजिए, दो एक मिनट की तो बात है अजान देने के लिए। तो कोशिश ये करें कि घर में आवाज़ें बुलंद अजान दें, या कम से कम एक कैसेट ऐसा ले लें बहुत अच्छे अच्छे कारियों के, और ईरान की से जो अजानें आती हैं या हरम में जो अजानें होती हैं कहीं से भी रिकॉर्ड कर लें, और उसके बाद घर में उस रिकॉर्डिंग को चला दिया करें। बहुत सी ऐसी घड़ियाँ अब आने लगी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मिलती हैं नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आते जाते हैं बाहर से भी, तो आप ऐसे उसमें नमाजों के टाइमिंग्स में उसमें फीड कर दें, तो जैसे ही नमाज का वक्त होगा वो फौरन उसके अंदर उन नमाजों के औकात में अजान घर में गूंजने लगेगी। और शिया अजान, शिया तरीक़े से जो दी जाती है वो अगर हो तो शयातीन वहाँ से फरार अख्तियार करते हैं। और बहुत सी तरीक़ों के अंदर ये भी है कि अगर किसी बच्चे का या किसी नौजवान का अखलाक ख़राब हो जाए, यानी कि वो बिगड़ा जा रहा है, तो उसका भी एक तरीका ये बताया गया कि उसके कान में अजान दी जाए। अच्छा, कान में अजान देने के मायने नहीं कि बिल्कुल हम ना मुंह उसके कान के अंदर घुसा दें वहां जाकर अजान दें, मसलन अगर आवाज़ उसके कान तक पहुंच रही है तो ये भी कान में अजान देना ही शुमार होगा। और बच्चा भी जब पैदा होता है कान में अजान दी जाती है तो उसका भी फलसफा यही, ठीक है, पहले इसके कान में जो अल्फाज जाएँ वो वहदानियत परवरदिगार, रसूल की रिसालत, आइम्मा की इमामत और नेकियों की तरकीब के तौर पर कान में इसकी इब्तदा ही ऐसे हो ताकि फिर ये सारी ज़िंदगी शयातीन से महफूज रह सके, यानी मुस्तहबात में से। तो घर में इस तरह से जो अजान दी जाएगी, और हत्ता कि बहुत सारे कान के अमराज के लिए अजान का कान में जाना बहुत फ़ायदेमंद, रिवायत में कि कान के अमराज इससे दूर होते हैं, तो बहुत से बच्चे जिनको समात कम होती है या और कोई ऐसा कान का मसला है तो वो भी वहाँ अगर अजान दी जाए उनके कान में तो उससे भी ये सब बीमारियाँ भी दूर होती हैं। तो हमारी रूह की बीमारियाँ भी अजान से दूर होंगी और हमारी जिस्मानी बीमारियां भी अजान के जरिए दूर होंगी। उसके बाद एक तरीका और है, ये अगर कोशिश करके आप कर लें वो ये है कि अगर एक खास इसी नियत से कि इससे गुना ना होने पाए, और एक खास दुआ पढ़ते हुए जो भी आपको मैं लिखवा दूंगा, जमजम अगर पिया जाए, आबे जमजम, आबे जमजम पीते वक्त जो भी दुआ मांगी जाती है वह दुआ जरूर कबूल हो जाती है। एक आलिम के पास बाकायदा एक शख्स आया, कहा कि जो हदीस के अंदर ये बात आई है कि जमजम पीते वक्त जो भी दुआ मांगी जाए जरूर कबूल होगी, क्या ये हदीस सही? उन्होंने कहा बिल्कुल सही। कहा तो फिर मैंने आबे जमजम पीते हुए ये दुआ मांगी थी कि आपसे मैं 1000 हदीसें सुनूंगा। उन्होंने कहा, आलिम ने, कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बैठो और उनको 1000 हदीसें सुनाई। तो जो भी दुआ कबूल करवानी हो, आबे जमजम पीते वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो जरूर इस्तेजाबत तक पहुंचती है, मुस्तजाब होती है दुआ, वो दुआ कबूल होती है। तो आप कोशिश करें कि या तो जमजम मंगवाएं कहीं से, लोग आते जाते रहते हैं, उम्रे के ऊपर लोग जाते हैं, उनसे बाकायदा फरमाइश करके मंगवाएं। पैगंबर इस्लाम फरमाइश करके, मक्के वाले, मक्के से कोई आता था तो फरमाइश करके उससे जमजम तलब करते थे, मदीने से कोई आता था तो अजवा खजूर तलब करते थे पैगंबर तोहफे में। तो जमजम लोगों से मंगवाएं, बाकायदा फरमाइश करके मंगवाएं, जो वहां पर रहते हैं दोस्त अकारिब रिश्तेदार, उम्र हज और ज्यारात के ऊपर जाने वाले अफराद, उनसे कहें कि आप जरूर लेकर आए। अच्छा, यहां पर आमतौर पर होता क्या है, वरना जमजम एक इंतहाई खुशगवार और बेहतरीन पानी, लेकिन क्या है कि यहां पर पता नहीं कौन कौन सी प्लास्टिक की बोतलों के अंदर लोग इसको रखते हैं, जिसकी वजह से इसका जायका प्लास्टिक की बोतल की वजह से जरा अजीब हो जाता है। आप मुनासिब सी बोतल में, शीशे की बोतल में, किसी ऐसी जगह इसको करके रखेंगे तो उसकी ताजगी, फ्रेशनेस और वो सब भी बरकरार रहेगी। तो जमजम खुद एक इंतहाई मुतबर्रिक पानी है और ये अंदर की तमाम बुराइयों को और बीमारियों को भी धो के साफ कर देता है, जैसे कि इसकी दुआ के अंदर आगे चलकर आप देखेंगे। तो वहां से मंगवा लें, वरना उस जमजम, क्योंकि जाहिर है कि वो तो मखसूस एक मकदार आएगी, रोजाना कुछ ना कुछ जमजम घर की पानी की बोतलों में मिला दिया करें ताकि उसके असरात उनके अंदर भी मुंतकिल हो जाएं, और फिर वो वैसे भी पूरे साल आप जमजम पीते हुए आप इस्तेमाल करें। जमजम का कुआं पहले तो ये था, खाने काबा के सहन में एक इमारत सी बनी हुई थी, फिर इसके नीचे ये इस तरह से जमजम का कुआं हुआ करता था, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हुई तो वो सामने से वो तमाम बिल्डिंग्स तो हट गई, उसके बाद ये एक दायरा सा बना दिया गया कि यहाँ पर जमजम का कुआं है। लेकिन उसके बाद फिर इस जमजम के, ये असल में जो पानी जमजम के कुएं से निकलता है ये आपके सामने के जो अंदरूनी तौर पर, अब तो खैर यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और ऊपर से भी जो निशान फर्श के ऊपर लगाया गया था कि यहाँ जमजम का कुआं है वो भी हटा दिया गया, तो ऊपर से तो पता नहीं चलता और अब कोई जमजम के कुएं की तरफ जा भी नहीं सकता, लेकिन चंद साल पहले तक लोग वहाँ पर जाते थे और बाकायदा बरह रास्त जो है वो पानी वहाँ का जमजम का पिया भी करते थे। और बहुत से लोग तो ये थे कि ये मुकाम इब्राहिम है, जो खाने काबा के सहन में जो शोकेस रखा हुआ नजर आता है सुनहरी रंग का, उसके अंदर हजरत इब्राहिम के पाँव के निशानात हैं। ये हजरत इब्राहिम के पाँव हैं जो शोकेस के अंदर जो रखे हुए होते हैं। और लोग पहले ज़माने में जो बादशाह हजरात हुआ करते थे, वो इस के अंदर आब जमजम का पानी डालकर और फिर इसके अंदर डालकर पिया करते थे। ये हजरत इब्राहिम के कदमों के निशानात। हजरत इब्राहिम जब खाने काबा की दीवार को बुलंद कर रहे थे तो एक पत्थर के ऊपर खड़े हुए थे, तो पत्थर पे खड़े होने के बाद ये पत्थर हुक्म खुदा से ऊपर न नीचे होता था। उस जमाने में कोई वो तो नहीं थी तो कोई इस तरह से कोई सीढ़ी या इस अंदाज से कोई चीज़ बनाती, वो पत्थर खुद ही खुदा के हुक्म से ऊपर और नीचे होता था और खाने काबा की दीवारें बुलंद की थी। फिर हजरत इब्राहिम को जब ये हुक्म हुआ कि लोगों को हज की तरफ बुलाओ, तो जैसे ही हज के लिए उन्होंने लोगों को बुलाया, ये पत्थर बर्दाश्त नहीं कर सका और मोम की तरीके से नरम हो गया और हजरत इब्राहिम के पाँव के अंदर धंस गए, और इतने धंस गए कि हत्ता कि हजरत इब्राहिम को पाँव को जिस तरह उखेड़ के निकालते हैं उसमें से इस तरह से पाँव निकालने पड़े और पत्थर पर कदमों के निशानात आ गए। फिर बाद में इसका एक निशान से एक वो केस बना दिया गया और लोग इसके अंदर फिर पानी जो है वो डालकर पिया करते थे। तो जमजम पीते वक्त ये वाली दुआ आप नोट कर लें कि जो खास तौर पर पीनी पढ़नी, अल्लाहुम्मा जअलहु इल्मन नाफियान व रिस्कन वासियान व शिफाअम मिन कुल्ले दाइन व सुक्मिन। परवरदिगार मुझे नफा बख्श इल्म अता फरमा, नफा बख्श, व रिस्कन वासियान और मुझे वसी रिस्क इनायत फरमा, व शिफाअम मिन कुल्ले दाइन व सुक्मिन और मुझे हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की खराबी से बचा, हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की खराबी से। तो इसमें जिस्मानी और रूहानी तमाम बातें शामिल हाल हो जाती हैं। मुकम्मल एहतराम के साथ जमजम को इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी अब कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रही। मसलन लोग तस्बीह सजदगाह लाकर देते हैं, लोग लेके एक तरफ डाल देते हैं कि बस ठीक है आई है वहाँ से मुतवर्रिक और मुकद्दस जगह से लेके किसी उसमें डाल दी। आलिम है उनको कोई और सिवाय तोहफे में देता ही नहीं, सिवाय के जानवाज़े लोग ला ला के देते रहते हैं और वो ढेर होती जाती हैं उनके पास। इसी तरीके से लोगों के पास भी जी जी आसान है तर्जुमा, परवरदिगार मुझे नफा बख्श इल्म अता फरमा और रिस्क वासे अता फरमा और हर किस्म की बीमारी और हर किस्म की खराबी से शिफा अता फरमा। तो जिस वक्त इस नीयत से इसको जमजम को पीते वक्त ये दुआ पढ़ी जाएगी तो तमाम किस्म की गुनाह और बीमारियां जो जिस्म की वो भी इंशाल्लाह इसकी बरकत से दूर हो जाएंगी। आयतुल्ला बहजत ने भी खास तौर पर एक अमल बताया जो कभी और बताऊंगा कि जो बीमारों की शफायाबी के लिए, तो उसमें भी उनको जमजम पिलाने की बात है। तो ये एक बहुत खास बात है। तो इसमें इसका जमजम का मुकम्मल एहतराम के साथ इसकी दुआ पढ़ते हुए और कोशिश करें कि इतना एहतराम हो कि मैं जाती तौर पर बात कहूँ कि जमजम का एक कतरा भी जाया नहीं हो, जमजम का एक कतरा भी जाया ना हो। यानी पूरे ऐसा कि वाकई आप कोई बहुत कीमती चीज जो है पी रही हैं जो आपको तमाम किस्म की बुराइयों और खराबियों से निजात दिलाएगी, ये जमजम इस तरह की चीज है। जी इसमें कोई जरूरत नहीं है, बैठ के भी पिया जा सकता है, खड़े होकर भी पिया जा सकता है। वरना जमजम को अपनी पीठ पे डालना, अपनी कमर पे डालना, अपने सर के ऊपर डालना, ये भी बहुत सारे हज के मुस्तहबात में से है जो वहाँ पे आमाल अंजाम दिए जाते हैं कि जिस वक्त इंसान सफा और मरवा की सही के लिए जाता है तो मुस्तहब है कि पहले जमजम पिए और उस जमजम को अपने सर पे और अपनी कमर के ऊपर भी डालें, क्योंकि पैगम्बर ने भी ये तरीक़ाकार इख्तियार किया था। तो खैर वो ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर भी करें, लेकिन ये यही वजह है कि जब हम तफसील इसकी बताएंगे इंशाल्लाह, जो आपकी एक सामान्य सफर आखरत बैग के सिलसिले में क्लास होगी, तो उसमें ये कि अपने कफन के ऊपर को जमजम से धोकर रखना ये भी मुस्तहब और बाई से सवाब है और इसकी बहुत फायदा दिलवाने वाला है, जिसकी तफसील का भी और बताऊंगा। तो बहरहाल ये एक चीज ऐसी है कि जो गुनाहों से बचने के लिए बाकायदा नियत की जाए कि परवरदिगार मैं गुनाहों में डूबी हुई हूं और इस दुआ को पढ़ते हुए कि मुझसे आइंदा जिंदगी में गुनाह ना हो और मैं एक पाको पाकीजा जिंदगी बसर करूं, इस दुआ को पढ़ते हुए फिर जमजम पीजिए और मुकम्मल इज्जत और एहतराम के साथ इसको एक प्रोटोकॉल देते हुए कि बहुत ही आप कीमती चीज जो है नोश फरमा रहे हैं और फिर यह चीज फायदा पहुंचाएगी। उसके बाद अगला तरीका है गुनाहों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। देखिए गुनाहों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना, बाज़ औक़ात ये भी हमसे जैसे कहा जाता है ना कि बहुत से सिगरेट पीने के लोग आदी होते हैं, रोज़ाना मसलन 25 30 सिगरेट पी रहे हैं, या बहुत से लोग तो सिर्फ एक दफ़ा तीली सुलगाते हैं और सिगरेट से सिगरेट बुझाते सुलगाते हैं उसके बाद, तो बहरहाल उसमें ज़रा टाइम लग जाता है। लोग कहते हैं भाई अगर सिगरेट छोड़नी है तो आपको कम करते करते जाना पड़ेगा, कम करते करते फिर छोड़िए, अगर 20 पीते तो 10 कर दें, फिर 5 कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से ख़त्म करें, तो उसमें बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये भी एक तरीक़ेकार है गुनाहों को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना। आप टारगेट बनाएं कि सबसे पहले मैं टारगेट बनाती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं गीबतें बहुत करती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं और गुनाहों को अपने तौर पर अमल करूँगी कि छोड़ने के लिए उन तरीक़ेकार पर अमल करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं गीबत को टारगेट बनाती हूँ। जब आप देखें हाँ गीबत अब बहुत कम हो गई, अब उसके बाद कोई और गुनाह पकड़ लें जो आपके ख्याल में आपसे ज़्यादा सरज़द हो जाता हो, फिर आप उसकी फिक्र में लग जाएं, महीना दो महीना उसको कम करने के अमाल करती रहें, फिर उसके बाद फिर तीसरे गुनाह की तरफ जाएं, तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड तो लेगा, लेकिन ये भी तरीक़ेकार अच्छा है। लेकिन उसके बाद एक तरीक़ेकार और भी है और ये ऐन मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है, गुनाहों को यकदम छोड़ना अभी आप बैठे बैठे भी नियत कर सकती हैं कि परवरदिगार मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमा, मैं आज से एक भी गुनाह नहीं करूँगा। शैतान बहुत ज़्यादा आपको लेकर आएगा और आपके दिल में एक मायूसी सी डालेगा, अरे कहाँ मुमकिन है कि एक भी गुनाह ना करो, करके तो देखिए, जब गुनाह अगर खुदा खुदा ना खौस्ता हो जाए तो तौबा की रबर आपके पास है, मिटा दीजिएगा उससे, लेकिन बहरहाल एकदम गुनाहों को छोड़ना ये भी ऐन मुमकिन चीज़ है। और तारीख में ऐसी मिसालें मिलती हैं, बाज़ोकात लोग जाते हैं खाने काबा, एक निगाह पड़ी खाने काबा पर एकदम मुनकलिब हो गए, आयमा के रोज़ों की ज्यारत के लिए गए और ज्यारत के सफर से जब वापस आए तो एक तब्दील शुदा इंसान के तौर पर नजर आ रहे। तो गुनाहों को एकदम छोड़ देना ये भी ऐन मुमकिन है, और तारीख में जैसे कि उन्होंने कहा कि मिसालें भी हैं। इमाम जब गुजर रहे थे एक गली में, तो घर एक घर से गाने बजाने की आवाज आ रही थी और घर की कनीस कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई। मौका मशहूर है लेकिन मुख्तसरन बता देता हूं। तो इमाम ने उस कनीस से जाकर पूछा कि इस घर का मालिक जो है आजाद है या गुलाम है? तो उसने कहा अरे मेरा आका तो आकाओं का आका है, आप ये पूछ रहे हैं कि आजाद है या गुलाम? इमाम ने कहा कि हाँ यकीनन आजाद है, जब भी आतिश जहन्नुम से भी आजाद है और गोया कब्र से भी आजाद है, इन जो मफहूम रिवायत का। इमाम ये कहते हुए चले गए। वो जो शख्स घर का मालिक था वो बाहर निकला और पूछा कनीस से कि कूड़ा फेंकने में इतनी देर कैसे हुई? कहा एक शख्स यहां से गुजर रहा था, मुझसे पूछ रहा था कि इस घर का मालिक आजाद है या गुलाम। जब मैंने कहा कि वो तो आजाद है, कहा यकीनन हर किस्म की अजाब से भी आजाद है और जहन्नुम से भी आजाद है और कब्र के अजाब से भी आजाद है। अब जो उसने सुना तो समझ गया कि इमाम मासूम के अलावा कोई नहीं हो सकता। भागा भागा नंगे पांव ही इमाम के पीछे गया, वहां जाके इमाम के कदमों में गिरा और ऐसी तौबा की। उसका नाम था बुशर, बुशर, बुशर। ऐसी तौबा की कि फिर सारी जिंदगी वो नंगे पांव रहा, उसका नाम ही पड़ गया बुशर हाफी। हाफी कहते हैं नंगे पांव रहने वाला। उसने कहा कि मैंने ऐसी सच्ची तौबा इस वक्त की है, मैं चाहता हूं कि सारी जिंदगी मुझे अपना इमाम से किया गया वादा याद रहे कि अब मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, और सारी जिंदगी इस बात को याद रखने के सिलसिले में बुशर ने कभी पांव में चप्पल नहीं पहनी और उसका नाम ही पड़ गया बुशर हाफी। आज तक तारीख में जिंदा और जावेद शख्सियत है। गुनाहों को एकदम तर्क करने के सिलसिले में जब भी कभी कोई बात की जाती है उलमा अखलाक की तरफ से, नामुमकिन है कि बुशर हाफी का ये वाकया वो अपनी किताबों में न लिखे या बयान ना करें। ये खुद एक इंतहाई अहम तरीन चीज जी। ये गालिबन सातवें इमाम का है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ऐसी कमजोर दुरूद अगर मेरे लिए भी आप पढ़ते तो मैं कभी कबूल ना करता इसे। उसके बाद अगला तरीका है, ये उलमा बयान करते हैं कि दूसरों के ऐबों से इंसान नसीहत हासिल करे। माशरे के अंदर आपको कितने गुनाहगार नजर आएंगे और कितने गुनाह होते हुए आपको नजर आएंगे, उनके ऐबों से नसीहत हासिल करें। मसलन कोई गीबत कर रहा है, आप फौरन दिमाग में लेके आएंगे ये ऐब तो मुझ में भी पाया जाता है। कोई अगर कोई गुनाह के अंदर मुबतला नजर आ रहा है, आपको एहसास हो रहा है करिए तो हसद में किसी की खातून बात करिए, आप कहेंगे ये गुनाह ऐब तो मेरे अंदर भी पाया जाता है। दूसरों के ऐबों से नसीहत हासिल करना, और वो इस तरह से एक ऐब दूसरे में देखें, मोरिद तफ्तीश अपनी ज़ात को करार दें। इसकी खोज में अपनी जात के अंदर लग जाए, कहीं गुना मेरे अंदर तो नहीं है। बहुत से लोग इस पर भी अमल करते हैं। देखिए उस हमारा तरीक़ेकार उन अफराद की तरह से, वो जो तीन चार अफराद नमाज पढ़ रहे थे उसमें से एक आदमी बीच में बोल पड़ा तो बराबर वाला कहने लगा कि अरे नमाज पढ़ रहे, कह रहे कि नमाज के दौरान बोलते नहीं है। दूसरे ने कहा कि तुम भी तो बोले हो। तीसरा कहने लगा खुदा का शुक्र है मैं नहीं बोला। तो हम हर शख्स जो है वो इस अंदाज से सिर्फ एक दूसरे को पर तनकीद कर रहा और अमाल सारे सभी के खराब हैं। तो हमें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है बल्कि मुरीद तफ्तीश अपनी जात को करार देना है कि कहीं ऐब और गुना कहीं हमारे अंदर तो नहीं पाए जाते, और फिर उसके बाद उनसे पीछे छुड़ाने की तरकीबें करना। उसके बाद ये एक इंतहाई अहम तरीन चीज है, कोशिश आप ये करें कि अहादीसे अखलाक का ज्यादा से ज्यादा मुतालिया करें। यही वजह है कि आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी से भी जब ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि हम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को किस तरह से बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, हम चाहते हैं कि मोहब्बत बढ़ती चली जाए। तो उन्होंने कहा कि आइम्मा की सीरत का दिक्कत नजरी से मुतालिया करें और आइम्मा के अकवाल को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जब आइम्मा की अहादीस आप पढ़ेंगी तो अहादीस अखलाकी अपना आईने के अंदर जैसे अपने चेहरे को आप देख रही हैं, सारे नकायस उसके अंदर उभर के सामने आ जाएंगे और इंसान अपने आप को उन गुनाहों से बल्कि उन गुनाहों से बचाने के तरीके भी उन अहादीस अखलाकी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें अखलाकी कुतुब का मुतालिया करें और अहादीस अखलाक का मुतालिया करें। आयतुल्ला हुसैन मज़ाहिरी की किताब है इस सिलसिले में अखलाक के मौजू पर, वो आप पढ़ सकती हैं। इसी तरीके से मसलन मीज़ानुल हिकमा के नाम से तकरीबन 8 वॉल्यूम तो उर्दू तर्जुमा हो गए हैं उसके, वो आप लेके, वो तो अगर थोड़ा सा भी किसी के पास माली गुंजाइश है तो इसको 8ों की 8ों जिल्दें अपने पास लेके रखनी चाहिए। कौन हुरूफ तहज्जी के एतबार से अखलाकियात की जितनी हदीसें आइम्मा की हैं सारी जमा की, इंतहाई बेहतरीन किताब है मीज़ानुल हिकमा। मीज़ान हिकमत के नाम से उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है इसका, आप ले सकती हैं और बेहतरीन किताब है, बल्कि हर मौजू पर हदीसें आपको मिल जाएंगी। इतनी बेहतरीन किताब है कि शायद इसके बाद बहुत सी छोटी छोटी किताबों से भी इंसान मुस्तगनी हो जाता है कि बेहतरीन किताब एक पूरा सेट उसके पास आ गया। 8 वॉल्यूम है, ये मिलती भी नहीं है, बाज़ औक़ात शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, लेकिन आप जितने भी अवेलेबल हों शायद आपकी लाइब्रेरी में भी मौजूद है या नीचे, वो भी आप अगर चाहें तो यहाँ से इशू करवा सकती हैं पढ़ने के लिए, फिर वापस भी कर दीजिएगा ताकि औरों को भी मिल सके। अच्छा ये बहुत मुख्तसर में गुजर रहा हूँ, लेकिन ये कि बहरहाल आपको अपना मुतालिया बढ़ाना पड़ेगा आदी से अखलाक के सिलसिले में ताकि अपनी शरई जिम्मेदारी वाज़ेह होती जाए आपके लिए और आप बेहतरीन तरीके से इस राह पे अपने कदम आगे बढ़ाएं और अपने आप को मजबूत कर दी जाए अखलाकी तौर पर। उसके बाद अब अगला तरीका यह है, वाकई गुनाहों से इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को बचा सकता है जब अपने कफन को और अपनी कब्र को भी तैयार रखें। कब्र की तैयारी की तो भी आगे चलकर बात होती है, ये आमतौर पर खवातीन के लिए फिलहाल यहां पर मुमकिन नहीं है तरीका, लेकिन कम से कम एक कफन को लेकर तो तैयार रख सकता है शख्स। और ये बात याद रख लीजिए कि मैं एक वैसे आपको बता दूं इसका एक नुकता, इसके अंदर ना सिर्फ ये कि खुदा ना खास्ता कोई नहुसत नहीं है जैसे कि आमतौर पर लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कफन घर में रखा हुआ है तो बस अब मर के ही जाना है, उल्टा है मामला। जो शख्स जितना ज्यादा कफन को अपने तैयार रखेगा और उसको गाहे बगाहे देखेगा उसकी उम्र तवील होती चली जाती है, बिल्कुल उल्टा है। जिस तरीके से मैं आपको वो बता दूं, लेकिन इसके मेरे पास फोन नहीं आने चाहिए बाद में सिलसिले, एक दफा मैंने बताया था क्लास में गलती कर दी थी ख्वाब की ताबीर के सिलसिले, वो ये कि अगर कोई शख्स ये देखे कि ख्वाब में ये देखे कि वो मर गया है